हरे हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवेन, दामोदर देश भक्तवेन, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, और श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत अभी हम पृथ्वी माता पृथु महाराज को ऋषियों के और शास्त्रों के मार्गदर्शन में प्राणियों के दुख के निवारण और भोजन की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताने जा रही है, उसका श्रवण आज हम छठे श्लोक से आगे करेंगे। भूमि देवी जो भूमि देवी स्वयं भूमंडल जो अब गाय माता का रूप धारण करके निम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के पृथु महाराज को प्रसन्न करने के लिए मन को एकाग्र करके बुद्धि को संयम में रख कर और शास्त्रों और संतों के प्रमाण से कह रही है, पुरा सृष्टा हे औषध्यो ब्रह्मणा या विषाम पते भुंज्यमाना मया दृष्टा असाध्वे अद्रित वृत्तैहि। पुरा सृष्टा पहले सृष्टि की थी औषधियों की, सब बीजों की, किसने? ब्रह्मा जी ने। और हे राजा विषामपते, हे महाराज पृथु, भुंज्यमाना मया, और उन सारी औषधियों और सुख सुविधाओं धन धान्य का भोग कर रहे थे, मेरा भोग कर रहे थे, मुझसे प्राप्त कर रहे थे। दृष्टा, मैंने जब देखा कि वो असत भी है, अभक्त हैं, सत नहीं है, सताम नहीं है, असत भी हैं, यम नेम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, और अधृत वृत्ति, वो धृत वृत्ति नहीं है, उनकी अध्यात्मा कोई उद्देश्य नहीं है, वो केवल भौतिक भोग के लिए सारी औषधियों का भोग कर रहे थे। जब मैंने ऐसे देखा तो उन सबको छुपा लिया कि भविष्य में यज्ञ के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये पृथ्वी माता अब छह श्लोकों में ये सारा कारण बता रही है कि ये औषधियाँ क्यों नहीं प्राप्त हो रही हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हे राजन, ये मेरे प्रिय राजन, जो भी बीज जड़ औषधि अन्न ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था पूर्व काल में सृष्टि के समय में, इस वक्त अभक्त उसका भोग कर रहे हैं, उनको कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा ही नहीं है, विचार ही नहीं है। तो श्री प्रभुपाद ये छह श्लोक इसी भाव को पृथ्वी देवी पृथु महाराज को कहेगी और पृथु महाराज इसको स्वीकार करेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी ने लिखे, ब्रह्मा जी भौतिक जगत की सृष्टि जीवों के लिए करते हैं और उसकी एक योजना है कि ये जीव जो प्रकृति के स्वामी बन के भोग करना चाह रहे हैं इंद्रियों का, ब्रह्मा जी ने उनके लिए वेद का मार्ग दिया है कि वेद के ऊपर चल के अंत तो गत्वा वो भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवत धाम में आए। प्रभुपाद जी ने पहले सीधा ये लिखा है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जीवों के प्रकृति के भोग करने के लिए, साथ साथ में ब्रह्मा जी ने वेद भी तो दिए और मार्ग दिया धर्म का कि ये भोग को एक दिन छोड़ना है और भगवान को पाना है। तो ये जो मुख्य बात है, जो आवश्यकता की चीजें हैं धरती से जो उत्पन्न होती हैं, फल हो, फूल हो, अन्न हो, वृक्ष हो, और पशुओं के लिए भी जो चीजें मिलती हैं और जो पशु खाते हैं धरती से, उनके द्वारा जो दूध दही आदि प्राप्त होता है, इन सब का एक मुख्य उद्देश्य है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। क्योंकि ये सब सृष्टि तो करता भगवान है, कराता ब्रह्मा जी के द्वारा है, तो उसका उद्देश्य है कि सारी सामग्री यज्ञ के रूप में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उपयोग में की जाए, क्योंकि वो उसका स्वामी है, उसको संतुष्ट किया जाए। परंतु इस वक्त जो धरती गाय के रूप में है, वो बता रही है पृथु महाराज को कि ये यज्ञ के रूप में, यज्ञ के रूप में ये सब मुझसे उत्पन्न होने वाली ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की गई औषधियाँ, बीज, धन, धान्य, फल, फूल, घी, दूध, दही, अब भक्तों के द्वारा जिनका कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है वो इसका उपभोग कर रहे थे। और मेरे अंदर क्षमता है, मैं तो अधिक से अधिक और भी अधिक अन्न धन धान सब प्रकट कर सकती हूँ, फल फूल वृक्ष कर सकती हूँ। प्रभुपाद जी कहते थे कि धरती इतनी खाली पड़ी है जितने आज धरती के ऊपर जीव रह रहे हैं इससे 10 गुना ज़्यादा हों उनके लिए भी सब चीज़ों की आवश्यकता धरती पूरी कर सकती है। परंतु धरती कहती है क्योंकि ये अभक्त थे, ये उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, इनका कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, बस केवल होना चाहिए भगवान के लिए सेवा के लिए और कर रहे हैं अपने इंद्रियों के भोग के लिए। ये सारी वस्तुएं जो प्रकृति से परम पुरुष भगवान की करुणा कृपा से जो हमारे परम पिता है वो देते हैं, उनका सीधा इंद्रियों के भोग करने का भाव अभक्ति का सूचक है। वो भगवान को अर्पण करके यज्ञ के रूप में भोग लगाकर फिर उसको भोग करना वो भक्त का सूचक है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वो भगवान को अर्पण करना चाहिए, केवल इंद्रियों का भोग नहीं करना चाहिए, ये ही योजना है, पूरी योजना भौतिक जगत की, भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में यही है और इसका उल्लंघन हो रहा है। अब दो शब्द जो इस श्लोक में है प्रभुपाद जी कहते हैं, एक असत भी और एक अदृत वृत्त ही, बहुत मुख्य शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है। असत भी का मतलब है अभक्त, और ये अभक्त कौन से हैं प्रभुपाद जी हमको भगवद्गीता के 7वें अध्याय से 4 प्रकार के दुष्कृतिन ये अभक्त हैं। असत भी के दुष्कृतिनो, कौन से दुष्कृत हैं? मूर्ख, मूढ़ गधे की तरह सुबह से शाम तक मजूरी करने वाले मूढ़, और उसके बाद हैं नराधम, मनुष्यों में सबसे नीच जो वेद के मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, धर्म के नियमों का पालन नहीं करते हैं, माया अपहर्त ज्ञाना, ये बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान और बड़े बड़े वैज्ञानिक जिनका माया ने ज्ञान हर लिया है, और तीसरे हैं नास्तिक। ये चारों जो हैं ये है असत, ये है अभक्त, और इनके लिए एक और शब्द भी है, असत भी के साथ एक शब्द है ग्रह वर्त। ग्रह वर्त का मतलब है केवल अपने घर गृहस्थी और इंद्रिय तृप्ति उनके जीवन का लक्ष्य है, न शास्त्र की मर्यादा का और न ही भगवान की सेवा का कोई भाव है। और इसके विपरीत शब्द है धृत वर्त, धृत वर्त है भक्ति का सूचन, जिन्होंने निश्चय कर लिया है, व्रत कर लिया है कि जो कुछ है भगवान को अर्पण करना है, उनका है उनको अर्पण करना है, तो यूं उनको कहते हैं धृत व्रत। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत में वेद के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि जीवों को धृत व्रत बनाया जाए। धृत व्रत बनाया जाए का मतलब है भक्त बनाया जाए, और धृत व्रत जिनको बनाया जाए उनका काम क्या है? वो वो क्या करना चाहिए। व्रत का मतलब है, जैसे हम कहते हैं आज एकादशी का व्रत है, अन्न नहीं खाना है, तो ऐसे वो लोग व्रत धारण कर ले। क्या व्रत धारण कर ले? कि हम सब चीजें भगवान की संतुष्टि के लिए ही उपयोग में करेंगे, और भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए सारा काम जो किया जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं उसको कहते हैं कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा। कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा, सारा प्रयास कृष्ण के प्रसन्नता के लिए है, सारा ही कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए है। ये भगवद गीता में बताया गया है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधन। भगवान के लिए, विष्णु के लिए, नारायण के लिए, कृष्ण के लिए सारे कार्य करने चाहिए, सब उनकी चीजें हैं, उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की और भगवान का यज्ञ किया, तो जो चीजें भगवान ने प्रकट की थी उन्हीं से भगवान का यज्ञ किया। ये ब्रह्मा जी ने हमको मार्गदर्शन किया। प्रभुपाद जी कहते हैं अब कलयुग है, लोगों ने भगवान को भुला दिया है, कलयुग में कृष्ण को तो भुला दिया, केशव को भुला दिया, विष्णु को भुला दिया है, पूर्ण रूप से भुला दिया है। और उसका परिणाम क्या है? सभी दरिद्र हैं, सभी दरिद्र हैं। जो भगवान के भोग्य की चीजें हैं, जब वो स्वयं भोग करते हैं तो निश्चित रूप से वो दरिद्र हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात लिखी है। अंत तो गत्वा वो सब दरिद्र हो जाते हैं। हमको दरिद्र की परिभाषा तो और पता नहीं है। वैदिक काल में गांव के लोगों के घर में 12 महीने का अन्न, 12 महीने के खाने के लिए चावल, गेहूं, घी, घर में गाय का दूध, खेत से समय के ऊपर आने वाले सब अन्न, जिसके पास व्यवस्था थी वो है सुखी। आजकल भले शहर के अंदर करोड़पति अरबपति कारखानेदार है, किसी के घर में पूरे बंबई और दिल्ली के और कलकत्ते के सारे सेठों के घर में अगर एक महीने का राशन मिल जाए तो मुझे बताना, एक महीने का भी राशन नहीं है, लाते हैं और खाते हैं, इसी को दरिद्र कहते हैं। और गांव में 12 महीने का तो 12 संभाल के रखते हैं, गेहूं आया तो समय पर रख दिया, चावल आया तो 12 महीने का रख दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान के भोग की वस्तुएं अगर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई उपयोग में लाएगा तो आज नहीं तो कल दरिद्र हो जाएगा, ये तो निश्चित है। और न फिर किसी को अन्न मिलेगा, न फल मिलेगा, न फूल मिलेंगे, पृथ्वी से ये सब चीजों का अभाव होता जाएगा। और 12वें स्कंद भागवत में तो कलयुग के जो कलयुग के लक्षण लिखे हैं उनमें लिखा है कि आने वाले समय में लोगों को ये गन्ना, ये दूध, ये दही, ये चावल, गेहूं नहीं मिलेंगे। एक कवि ने कविता लिखी थी, आने वाली पीढ़ी को दाना गिनकर दाल मिलेगी, किलो दाल नहीं मिलेगी, कितने दाने चाहिए, 50-25, कितने थैली में दाने गिने पड़े होंगे दाल के, दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की तो छाल मिलेगी, गेहूं नहीं होगा, भूसा होगा जो गाय को डालते हैं, उसका छाल है ना, उसका आटा पीस के देंगे। और वैसे भी आज गेहूं से पहले तो निशास्ता निकाल देते हैं, स्टार्च, फिर मैदा निकाल देते हैं, सूजी निकाल देते हैं, और जो भूसा बचता है वो आटा बोरी के अंदर बना के हमारे सर में डालते हैं। इतना तो आज भी हो रहा है, दाना गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की तो छाल मिलेगी, पानी के मिलेंगे इंजेक्शन आने वाली पीढ़ी को, बोतलें मिलती थी, बोतल नहीं मिलेगी, अब इंजेक्शन लेनी पड़ेगी पानी की, खटिया सबकी खड़ी मिलेगी, बिस्तर मिलेगा गोल, किसी के पास कुछ नहीं होगा। ये स्थिति क्यों होगी? आज सुन लीजिए प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी, भगवान के भोग की चीजें अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाने वाला अंततो गत्वा सारा मानव समाज दरिद्रता की ओर जा रहा है। सातवां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वी महारानी गौ माता के रूप में कह रही है, अपालिता नाद्रत च, अपालिता मेरी किसने पालना नहीं की, ध्यान नहीं दिया मेरा, अनादृता मेरा आदर भी नहीं किया, मुझे तो अनादृत मेरा कोई सम्मान नहीं किया, मान नहीं दिया, मैं माता हूं मेरा पालन भी नहीं किया, किसने, भवद भी आप जैसे राजाओं ने, पृथ्वी को कह दिया आप जैसे राजाओं ने, सब राजाओं की ओर उंगली उठा रही है, विशेष रूप से पृथ्वी जी के पिता वैण की ओर ऊपर उंगली उठा रही है, जिन्होंने पृथ्वी का पालन नहीं किया और आदर नहीं किया। लोकपाल कई ही, जो लोक के पालन करने वाले हैं, अपाल अपालिता अनादृता च भवद भीर लोकपाल कई ही, चोरी भूति अथ लोके अयम अहम। उन राजाओं ने चोरों को दंडित नहीं किया और सभी लोग चोर हो गए और अहम वो मेरा दोहन करने लगे, मेरा शोषण करने लगे, इसलिए यज्ञ अर्थे अगर असम औषधि ही, इसलिए भविष्य में यज्ञ के लिए सब चीजें चाहिए, मैंने सबको छुपा लिया, क्योंकि ये सब समाप्त कर देते अपने भोग में, चोर थे डाकू थे, मैंने सबको छुपा के रखा कि भविष्य में यज्ञ के लिए आवश्यक पड़ेगी, कोई तो धर्मात्मा राजा आएगा, सब तो ऐसे चोर, सब तो ऐसे शोषण करने वाले शासन तो नहीं होंगे, शासक नहीं होंगे। तो इस श्लोक का भाव है, हे महाराज पृथु, केवल ऐसा भी नहीं है कि अभक्तों ने सब भगवान की भोग्य वस्तुओं का इंद्रिय तृप्ति में भोग किया, उससे भी अधिक मेरी समस्या ये थी कि किसी ने मेरा पालन नहीं किया। राजा को कहते ही भूपाल है, भू का मतलब पृथ्वी का, पृथ्वी का पालन करना है, तो मेरा किसी ने पालन नहीं किया, और सच तो ये है कि मेरा अनादर हुआ, लोगों ने कोई ना कुछ मेरा ध्यान नहीं दिया, बड़े बड़े राजाओं ने, बोला क्या किया, बोला चोरों को दंडित नहीं किया। ऐसे असद भी जो थे, अभक्त जो थे, और जो जिनकी जिनके व्रत जो थे धृतवृत्ति नहीं थे, अधृतवृत्ति जो थे, आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले नहीं थे, उनको दंडित नहीं किया। और मैंने देखा कि ये चोर सब चीजों का उपयोग करेंगे तो भविष्य में आने वाले लोगों को यज्ञ करने के लिए कोई औषधि मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने सबको अपने अंदर छुपा के रखा है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, वैण का मन में, पृथ्वी के मन में नाम है वैण का, लेकिन उनके पृथु पुत्र को और उसके बहाने सारे राजाओं के ऊपर उंगली उठा के कह रही है कि किसी ने मेरी पालना नहीं की। बोला पालना नहीं की, कैसे पालना नहीं की, बोला यज्ञ नहीं किया। अगर राजा यज्ञ का व्यवस्था करे तो है पृथ्वी का पालक, और अगर यज्ञ की व्यवस्था न करे तो पृथ्वी का पालक नहीं है, पहली बात, और उसका आदर नहीं किया, इसका अर्थ क्या है, अधर्म बढ़ा और उनको दंडित नहीं किया गया। अधर्म बढ़ना पृथ्वी का अनादर है, और यज्ञ न करना पृथ्वी का पालन करने में दोष है। पृथ्वी के पालक को यज्ञ का प्रभाव प्रबंध करना चाहिए, और पृथ्वी का आदर करना है तो धर्म का मार्ग चलाना चाहिए, अधर्मी लोगों को दंडित करना चाहिए। और इसलिए वैण जैसे राजा, उनके समय में चारों ओर चोर ही चोर इतने फैल गए थे, इसलिए मैंने सारी औषधियों को निगल लिया। तो वो मैंने निगल लिया, अब मैं कहां से लाऊं, मैंने क्यों किया ये, क्योंकि भविष्य में यज्ञ के लिए इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत अच्छा है। प्रभुपाद सीधा कहते हैं, जो पृथु महाराज के समय में या उनके पिता वैण के समय में हुआ था वो आज भी हो रहा है। क्या हुआ था? बोला बहुत बड़ा योजना बनाई जा रही है, बहुत व्यवस्था की जा रही है, बड़े स्तर के ऊपर कारखाने लगाने की, बड़े स्तर के ऊपर ट्रैक्टरों के द्वारा धरती के अंदर से खाद डाल के अधिक अनाज उत्पादन करने का बहुत बड़ा एक योजना बनी है, परंतु इतने प्रयास के उपरांत भी सब चीजों का अभाव और ज्यादा भाव, चीजों का अभाव है और उनका भाव ज्यादा है। तो ये चीज आज भी देखी जाती है प्रभुपाद के थे। तो प्रभुपाद के इसलिए आप कितना भी उत्पादन करो सदा ही अभाव रहेगा। कब? क्यों? क्योंकि विश्व में धरती के ऊपर चारों ओर चोर फैले हुए हैं। कितना भी उत्पादन हो अभाव सदा रहेगा, क्योंकि चारों ओर पृथ्वी के ऊपर विश्व में चोर ही फैले हुए हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, चोरी भूता शब्द जो है ये महत्वपूर्ण है। अब चोरी की परिभाषा क्या है? वेद के वाक्य से चोरी की परिभाषा प्रभुपाद जी कहते हैं, आर्थिक उन्नति भोग के लिए करना चोरी की पहचान है। चोरी भूता का मतलब सब चोर हो गए हैं संसार में। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज प्रोड्यूसिंग थीव्स। तो फिर अर्थ काय के लिए होना चाहिए? अर्थ अगर काम के लिए नहीं हो तो काय के लिए होना चाहिए? अर्थ धर्मस्य, अर्थ होना चाहिए धन का। आपको अगर आप चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इसका मतलब अर्थव्यवस्था अच्छी हो, तो उसका उद्देश्य होना चाहिए धर्म के काम में लगना चाहिए, भोग के लिए नहीं। तो भोग काय के लिए होना चाहिए? जीवन निर्वाह के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो जीवन काय के लिए होना चाहिए? भागवत कहती है तत्व जिज्ञासा, जीते हैं तो तत्व को जानना चाहिए, सार को समझना चाहिए। जीना खाने के लिए मूर्खता है। तो तत्व क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है एक, उसको जानना ये तत्व है। तो ये नहीं है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता में तो सीधा लिखा है, जो भगवान को अर्पण करके जो भी खाता है वो केवल पाप खाता है और चोर है। ये तीसरे अध्याय भगवत गीता का श्लोक है, स्तेन एव, चोर है और खाता क्या है? पाप। भगवान को अर्पण करके नहीं खाता है तो पाप खाता है और चोर है, और चोर है तो दंड देना चाहिए उसको। अब प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक साम्यवाद क्या है? आध्यात्मिक साम्यवाद का अर्थ है, जो विश्व के अंदर धरती के ऊपर जो भी जनता है और जो भी धन धान्य है, संपत्ति है, उस सब का स्वामी भगवान है। ईशा भाषा इदम सर्वम जगत, जगत में ईशा भाषा जो भी है वो सब भगवान का है। ये है साम्यवाद, ये है आध्यात्मिक साम्यवाद। और भौतिक साम्यवाद क्या है? सारा राष्ट्र का है और राष्ट्र के ऊपर कौन बैठा है? बड़ा चोर। और चोर की पार्टी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आगे इसमें क्या है, सब अगर भगवान के लिए भोग के लिए है तो भगवान वापस क्या देंगे, प्रसाद। और जो खाएगा प्रसाद वो हो जाएगा भक्त, और जो न लगाएगा भगवान को भोग और न खाएगा प्रसाद तो समझ लो है चोर। निश्चित रूप से चोर है प्रभुपाद जी। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जो राजा है, जो शासक हैं, जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, उनका ये धर्म है ऐसे चोरों को दंडित करें और धरती के ऊपर सुचारू रूप से लोग सुखी रहें ऐसा शासन करें, अच्छी तरह से संसार को चलाए, चोरों को दंडित करें। अगर ऐसे नहीं किया गया, ऐसे नहीं किया गया, बिना भोग के प्रसाद वितरण नहीं हुआ, गली गली में चौराहे चौराहे के ऊपर, चौपाटियों के ऊपर, वृंदावन में चौपाटी खुली है, हम तो देख के दुखी होते हैं, बाहर जाते हैं वृंदावन में जहाँ हाथ में प्रसाद लेके दोने में खाना चाहिए और गंगा का जमुना का स्नान करना चाहिए, दर्शन करना, यहाँ तो सारे ही आके चौपाटी बनी हुई है, जहाँ ये तो चौप नाम ही लिखा है चौपाटी, और रात को 11 बजे देखेंगे लोग उधर बैठे खाते हैं, ये सुबह कौन सा ये सुबह मंगल आरती में जाएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे, खाएंगे भोग करेंगे और आए हैं धाम में, धरती के ऊपर पांव रखते नहीं है, ब्रज की रज में तो पांव रखते नहीं है, जूता पहन के घूमेंगे, जमुना के जल को हाथ नहीं लगाएंगे, बोलेंगे कि ये तो गंदा है, मंदिर का प्रसाद नहीं, ये तो नहीं, हम तो वो वहाँ चल के खाएंगे, चौपाटी में खाएंगे, उस जगह पे खाएंगे। तो क्या वहाँ सब भोग लगता है भगवान को? वो जो खोल के बैठे हैं क्या वो सेवा के लिए बैठे हैं? जो अंदर पकाते हैं क्या वो उनका भाव भगवान को सेवा के लिए अर्पण करने का? नहीं, वो भोग है, और जितना करते जाएंगे वो हमारी धर्म तीर्थ यात्रा को भी फल तो दे ना दे, लेकिन अपराधों में जोड़ देगा, धाम अपराध हो जाएंगे बहुत सारे, सावधान होना चाहिए। पहले जमाने में तीर्थ जाने के लिए लोग घर से निकलते थे तो व्रत रखते थे कि पहले जाएंगे गंगा जी का जल को छुपिएंगे, स्नान करेंगे और फिर कुछ खाएंगे, वृंदावन जाएंगे सीधा कृष्ण बलराम का दर्शन करेंगे, बांके बिहारी का दर्शन करेंगे, राधा श्याम का दर्शन करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे, ऐसा कोई यहाँ तो निकलते हैं जब तो रास्ते में 3-4 जगहों पे तो रुकेंगे, चाय पिएंगे और नाश्ता करेंगे, ये तीर्थ यात्रा नहीं है, ये तीर्थ के नाम में एक्सकर्शन हो रही है, पर्यटन हो जा रहा है। अच्छा है फिर भी चलो धाम में आएंगे, आज नहीं तो कल कुछ लाभ होगा, लेकिन धाम वासियों ने भी धाम के अंदर ये भोग की जो सामग्री, अब पहले जमाने में जब कोई आते थे ना बाहर तो कम से कम पंडे खड़े होते थे, कहते थे कौन सा दर्शन करने चला, आइए आपको दाऊ जी का दर्शन कराऊं, आइए आपको कृष्ण बलराम का दर्शन कराऊं। अब आपको ब्रज के अंदर कहीं कोई ऐसा नहीं मिलता है, दो ही चीज़ें मिलती हैं, रूम रूम रूम, एक रूम, आइए हमारे पास होटल में रूम लीजिए, और दूसरा ये सब खाना कहाँ खाएंगे। तो वही चीज जो नहीं करनी चाहिए वही करने के लिए यहां आते हैं, इतने सारे मंदिर और आश्रम है, उसमें बहुत सारी जगहें बनी हुई, वहां जाने वाले गांव वाले बेचारे आते हैं, वहां रहते हैं आराम से, और सुबह सवेरे संतों के साथ उठते हैं, भगवान का दर्शन भी करते हैं। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं इनको अगर दंडित नहीं किया गया तो भविष्य में ये सारे भूख मरेंगे, लिखा है जनता आगे चल के भूखमारी में मरेगी, केवल भूखमारी ही होगी, इतना नहीं है खाने के लिए कम मिलेगा, आदमी एक दूसरे को मारेगा, प्रभुपाद जी लिखते हैं, और मारने के बाद उसका मांस खाएगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और पशु का तो मांस आज ही मूर्ख खा ही रहे, पशु हत्या तो हो ही रही है, परंतु आगे चल के जब अनाज नहीं मिलेगा, फल फूल नहीं मिलेंगे, तो बेटा बाप को मारेगा, काम का नहीं है बूढ़ा, और अपने जीने के लिए उसका मांस खाएगा। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य का अंतिम लाइन है। सावधान होना चाहिए धामों को, इतना सारा सब जगह चमकाया है। जमुना जी को कितना सुंदर चमका के अच्छे घाट बनाए, देखो राजा महाराजाओं के घाट बने, वो गौ घाट से लेके केशी घाट तक 15-18 घाट है रास्ते में जो राजा महाराजाओं ने बनाए हैं, देखो कितने सुंदर बने हुए। अब घाट भी कोई बनाने वाला नहीं है जमुना के शुद्धि का, जमुना तो शुद्ध है लेकिन लोगों का मन और अंतःकरण इतना अशुद्ध है कि उनको अशुद्ध दिखती है। फिर भी अशुद्ध इसलिए है कि हम ही कचरा उसके अंदर डालने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर कचरा है। क्या जमुना जी का घाट चिंतामणि पत्थर का बना हुआ है, दिव्य चिंतामणि पत्थर का घाट बना हुआ है। आज हम स्नान करने गए थे, शाही स्नान उसका नाम था, सारे भारत के वैष्णव संत उसमें आए थे और घाट बना हुआ था, प्लास्टिक की बोरियों में रेत भरा था और उस प्लास्टिक की रेत की बोरियों की सीढ़ियां बनी हुई थी जिससे उतर के स्नान किया जमुना में, बड़ा आनंद हुआ। परंतु जहां चिंतामणि ब्रज में घाट है, ये पुरानी एक कथा है, शहनशाह अकबर बीरबल से कहा, ओ नहीं तानसेन के कहा कि इतना सुंदर कहाँ से गाना सीखा, बोला हरिदास जी मेरे गुरु हैं, बोला कहाँ रहते हैं, बोला ब्रज में रहते हैं, बोला उनका गाना सुनना है, चले आए यहाँ आगरा से, यहाँ चले आए। हरिदास जी जमुना के दूसरे किनारे बैठे थे भगवान के सुमरण में। अकबर ने कहा इसको कहो गाए, अब गुरु को कैसे आदेश दे के गाओ लेकिन राजा को कैसे मना करें। तो तानसेन ने गाना शुरू किया, ताल और सुर ठीक नहीं चलाया, तानसेन के गलत गाने के ऊपर हरिदास ने कहा तानसेन ऐसे नहीं गाते, इसको ऐसे गाना चाहिए। उन्होंने गाना शुरू किया, पेड़ों ने हिलना बंद कर दिया, पक्षों ने चूचू करना बंद कर दिया, जमुना स्थिर हो गई और ऐसा दिव्य वातावरण हुआ कि शहनशाह अकबर तो ऐसे स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, तानसेन तुम्हारे से तो ये लाख गुना अच्छा गाता। तानसेन ने कहा महाराज मैं कहाँ, तुलना मेरी उनसे होती है, वो जगन्नाथ के लिए राज गा रहा है, वो तो गोविंद देव जी के लिए गा रहा है और मैं एक संसार के राजा के लिए गा रहा हूँ और वो जगत के राजा के लिए गा रहा है, तो तुलना नहीं हो सकती महाराज। बोला चलो उनके पास ले चलते हैं, जाके प्रणाम किया। अकबर कहने लगा कोई सेवा बोली हमारे को, मैं क्या करूं आया हूं। तो अकबर को वृंदावन का वैभव दिखाने के लिए कहा कि काली घाट के पास में थोड़ा घाट का टुकड़ा टूट गया है, उसका रिपेयर करा दो। अकबर को तो अटपटा लगा, मैं इतना बड़ा पूरे भारत का हिंद का राजा हूं और एक पत्थर का टुकड़ा बनाने के लिए मुझे कह रहा है, चाहे तो मैं यहाँ बहुत बड़े भव्य मंदिर, ये जो लाल मंदिर पत्थर का बना हुआ है गोविंद देव जी का, ये तो अकबर के ही समय में मानसिंह जयपुर के राजा के द्वारा इसका निर्माण संतों ने के कहने के ऊपर कराया रूप गोस्वामी के लिए, उसी लाल पत्थर का है जिसका आगरा का किला बना हुआ है। परंतु तानसेन ने कहा महाराज चलो देखते हैं। थोड़ी देर के संत की कृपा हुई, वहाँ जाके देखा कि पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये तो चिंतामणि हीरा मोती ऐसा बना हुआ है कि अकबर ने कहा मेरे खजाने में सारा धन लगाऊं तो ये टुकड़ा नहीं पूरा हो सकता है, ये घाट पत्थर का नहीं बना हुआ है, ये चिन्मय घाट है, यहाँ तो नित्य विहार करते हैं कृष्ण और गोपियाँ और गोप, जल क्रीड़ा करते हैं, उनके लिए ऐसे घाट नहीं होते, ये अभाव का निशानी है, ये उसका सूचना है कि कितना अभाव संसार में सब चीजों का हो रहा है। आगे पृथ्वी महारानी कह रही है, न्यूनम ता विरुद्धक्षिणा मई काले न भूयसा तत्र तत्र योगेन दृष्टेन भवान आदतुम आदातुम अहरति। न्यूनम इसलिए निश्चित रूप से ता विरुद्धक्षिणा, वो जो विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब वो जो सारे बीज औषधियां है ना वो क्षीण हो गई है। क्षीण का मतलब दो है अर्थ है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि वो सूक्ष्म हो गए हैं और श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि वो पक गए हैं, तो मैं उनको ऐसे नहीं निकाल सकती। मई काले न भूयसा, बहुत समय बीत गया, समय के प्रभाव से बहुत समय हो गया, वो सब क्षीण हो गए हैं, पक गए हैं अथवा सूक्ष्म हो गए हैं। अब क्या करो, तत्र योगेन दृष्टेन, अब जो शास्त्र ने मर्यादा बनाई है, और दृष्टे का नाम मतलब है जो जो संत होते हैं, जो दृष्टा होते हैं, ऋषि होते हैं, जो तत्व दृष्टा है। योगेन का मतलब जो उसके लिए मार्ग बताया हुआ है, योगेन का अर्थ लिखा है सही रास्ता, सही विधि, और किसने बताई हुई है, दृष्टेन, जो तत्व दृष्टि विद्वान वेदज्ञ है, उन्होंने जो दृष्टि बनाए, महाराज भवान आदातुम अहरति, आप मुझसे सब कुछ प्राप्त कर सकती हैं वेद विधि से और संत सहयोग से। पृथ्वी महारानी कहते हैं अति समय तक मेरे उदर में ये सब बीज क्षीण हो गए हैं, प्रभुपाद ने क्षीण का अर्थ लिखा है क्षीण हो गए हैं, इसलिए वो तत्काल बाहर नहीं प्रकट हो सकते हैं। इसलिए जो विधि विधान है जैसे आचार्यों ने और शास्त्र ने बताए हैं, महाराज आप उसका उपयोग कीजिए और मुझसे सब जीवों के कल्याण के लिए आवश्यकता की सब चीजें प्राप्त कीजिए। दृष्टेन योगेन का मतलब है जैसे शास्त्र ने और वेद ने वर्णन किया है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं जब अन्न का जब अनाज का फल फूल का अभाव हो तो प्रभुपाद जी लिखते हैं शासन को और सरकार को शास्त्रों के निर्देश में और संतों के मार्गदर्शन में जो विधि विधान है उसका पालन करना चाहिए, तो फिर कभी अकाल प्रभावशाली नहीं होगा, अकाल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब चीजें अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में संपन्न मिलेंगी विधि विधान से। कौन सा विधि विधान है, भगवद गीता में विधि विधान बताया है, प्रभुपाद जी कहते हैं यज्ञ, यज्ञ करो, यज्ञ करने से आकाश में बादल आ जाएंगे, बादल से वर्षा होगी, और वर्षा अगर हो गई तो सारे खेत हरे भरे हो जाएंगे और पृथ्वी के अंदर से उत्पादन सब चीजों का अधिक से अधिक होने लग जाएगा और इस प्रकार से सब सुखी हो जाएंगे, अति अन्न और खाने पीने के पदार्थ सब प्राप्त हो जाएंगे, और उस घास को खाकर गाय बकरी भी प्रसन्न होके और दूध देंगी, और दूध से बने हुए घी मक्खन और दही और आजकल तो छेना पनीर चीज, ये इतना सारा माल मिल जाएगा कि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, और इन चीजों के द्वारा फिर यज्ञ करो, शास्त्र ने यज्ञ का ही नियम बनाया है, तो कभी भी अन्न का अभाव नहीं होगा। और कल युग में तो बहुत सरल यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, प्रभुपाद जी कहते हैं कल युग में बहुत सरल संकीर्तन यज्ञ है। और इस श्लोक में दो शब्द है, एक योगेन एक दृष्टेन, महत्वपूर्ण है। योगेन का मतलब जो मार्गदर्शन शास्त्र ने किया है, जो विधि विधान है वो, और दृष्टेन का मतलब है जैसे आचार्यों ने, तत्व दृष्टियों ने, साधु जनों ने जो मार्गदर्शन किया है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये गलत विचार धारणा है कि आधुनिक मशीनों के द्वारा हम खेत से अन्न का उत्पादन कर देंगे, फल फूल पैदा कर देंगे। ले जाओ ट्रैक्टर, राजस्थान की रेत में चलाओ, अन्न पैदा करेगा क्या? नहीं करेगा। प्रभुपाद ने लिखा है नहीं करेगा। केवल यज्ञ से हो सकता है। ये सब जो और ये ट्रैक्टरों ने धरती के ऊपर इतना भार डाला है, बड़ी बड़ी मशीनों के, धरती सारी चिपक गई है, उसके अंदर सांस लेने को भी जगह नहीं है, और इसलिए फिर खाद डालनी पड़ती है, और पानी का इतना अभाव है, गटरों का पानी खेतों में जाता हुआ हम देखते हैं। तो क्या ये हो गया है सब? इससे किसी को कोई सुख नहीं मिलने वाला है। प्रभुपाद जी कहते जाओ राजस्थान की रेत में ट्रैक्टर चलाओ, कहां से अन्न पैदा होगा क्या? नहीं हो सकता है। हमने बहुत से प्रयास किए धरती के ऊपर अन्न को उत्पादन करने के, परंतु यज्ञ नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। और यहां पृथ्वी स्वयं कह रही है मैंने सब चीजें संभाल के रखी हुई हैं यज्ञ के लिए, करो यज्ञ प्राप्त करो सब, और नहीं करो यज्ञ और इंद्रिय तृप्ति के लिए सब चीजों को आप उपयोग में लाओगे और नास्तिक बन जाओगे, आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर नहीं चलोगे। और जैसे शब्द था हरे कृष्ण, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाओ, भौतिक मार्ग से काम नहीं चलेगा। इसलिए शास्त्र ने और बुद्धिमानों ने कहा है संकीर्तन यज्ञ करो, और संकीर्तन यज्ञ से प्रभुपाद लिखते हैं संकीर्तन यज्ञ का शुभारंभ करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु गौरंगा स्वर्ण अवतार का पूजन हरे कृष्ण महामंत्र से करो, और स्वर्ण भूमि बनाओ। ये भूमि सोने की बन जाएगी। सोने की भूमि का मतलब जब पके हुए खेत लहराएंगे वो पीले लगते हैं, पहले हरे होती है, पहले खेत लगते हैं हरे, और जाके देखो अभी सरसों के खेत पीले लगे हुए हैं, और जब गेहूं बक जाएंगे तो पीले लगेंगे, उसको कहते हैं स्वर्ण भूमि, वो सोना उगलेगी भूमि। उसके लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वर्ण वर्ण के हैं उनका प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, संकीर्तन यज्ञ करो। और प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत संग इसी कार्य को विश्व के अंदर प्रचलित कर रही है। क्यों कर रही है? भक्त यही प्रचार का कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जैसे हमने आगे श्लोकों में पढ़ा है, इसकी आवश्यकता है कि चोरों को सुधारना है, भक्त बनाना है। ये सब चोर है, देखने में बड़े पढ़े लिखे लगते हैं, बड़े सेठ कारखानेदार लगते हैं, लेकिन हैं सारे सुखी परंतु महाचोर। चोर तो चोर ही होता है, उसको दंड देना ही चाहिए, क्योंकि संसार में सभी लोग कृष्ण भावना से वंचित है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए चोर हो गए। इसलिए प्रकृति उनको दंडित कर रही है, प्रकृति उनको दंडित कर रही है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। कितना भी दान लेके आओ संसार से और मुफ्त की सेवा करो, अन्न बांटो, धन क्षेत्र अन्न क्षेत्र चलाओ, जगहें बनाओ, कुछ नहीं होने वाला। जब तक कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आजीविका का अभाव समाप्त नहीं होगा और दुख जाएगा नहीं। इसलिए पूरे विश्व के लिए वरदान है श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, इसका सबको प्रेम पूर्वक पालन करना चाहिए। पृथ्वी महारानी का एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। अब पृथ्वी महारानी वो वेदों का बताया हुआ साधन बता रही है। वत्सान कल्पया मे वीरा ये ना हम वत्सला तवा धोक्षये क्षीरमयां कामां अनुरूपं च दोहनं दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावनः अनम ईप्सितं ऊर्जस्व भगवान वांछते यदि। हे भगवान पृथु महाराज, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रजा के लिए अन्न हो, और कैसा अन्न हो, ऊर्जा शक्ति देने वाला अन्न हो, बुद्धि देने वाला अन्न हो, तो फिर क्या करो, वत्सान कल्पस्य मे वीर, हे वीर महाराज, हे सूरवीर, हे हीरो, कोई बछड़ा पैदा करो, योग्य बछड़ा लाओ, क्योंकि ये ना हम वत्सला तब तो उसके ऊपर मेरे हृदय में स्नेह उत्पन्न हो जाएगा, और ये जो बीज अंदर क्षीण हो गया ये फिर उत्पन्न हो जाएंगे। तो एक तो लाओ बछड़ा योग्य, और दूसरा धोक्ष हे क्षीरमयाम कामान अनुरूपान च दोहनम, और दूसरा दूध निकालने वाला को दोहन करने वाला होना चाहिए जो दूध निकाल सके, और तीसरा किसके अंदर दूध निकालोगे वो पात्र चाहिए। तीन चीजें चाहिए, बछड़ा चाहिए, दोहने वाला चाहिए, और पात्र चाहिए। ये तीन चीजें दोगधारम च महाबाहो, हे महाबाहो राजा, वीर राजा भगवान, दोगधारम दूधने वाला लाओ, भूतानाम भूत भावन है, आप अगर प्रजा का पालन करना चाहते हो, अनम मीप से तम मूर्त, तो फिर हम आपको जितना चाहे पौष्टिक पदार्थ सब प्राप्त करा देंगे। तीन चीजें चाहिए, बछड़े के लिए स्नेह, दोहने वाला और पात्र। तो ये योग बता दिया, विधि बता दी, और दृष्टे न साधुओं ने यही विधि बनाई है। हे वीर, हे प्रजा के रक्षक, अगर आप इच्छा करते हैं कि आपकी सारी प्रजा पौष्टिक पदार्थों को प्राप्त करे, अन्न धन से सुखी हो जाए, तो मैं गाय के रूप में हूं, मेरा दोहन करो, दोहने वाला लाओ, बछड़ा लाओ, पात्र लाओ, मैं बछड़े को देखूंगी तो वत्सला हूं, स्नेह उसके ऊपर उमड़ आएगा, और तब मैं सबकी इच्छा पूर्णी करने के लिए जो चाहिए वो दे सकती हूं। आगे चल के तो पृथु महाराज पृथ्वी को पुत्री बनाएंगे, दोहेतर बना देंगे। दोहेतर संस्कृत में पुत्री को कहते हैं, दोहेतर का अर्थ है गाय को दोहने वाली, और दोहेतर है पुत्री के लिए शब्द, और वही अंग्रेजी में डाटर हो गया, दोहेतर डाटर, वही से बिगड़ के बन गया। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, गाय के दोहन का अति उत्तम यहां शिक्षा दी जा रही है, संदेश दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। पहले तो बछड़ा चाहिए, क्योंकि बछड़े के स्नेह के कारण ही गाय के उदर में दूध हृदय से उतर के आता है, और दूसरा होना चाहिए कोई दूध निकालने में प्रवीण, होशियार ग्वाला होना चाहिए। आपको अगर याद हो तो गीता का भी एक श्लोक महात्म्य का है, सर्व उपनिषदों गावो, सारा वेद शास्त्र गाय का रूप धारण कर ले, गाय में अमृत तो दूध होता है, पर दूध निकालने वाला कौन है, बोला दोगधा गोपाल नंदन, कृष्ण है दूध निकालने वाला, बोला दूध निकालेगा गाय बछड़े के लिए पार्थ हो वत्स, अर्जुन है बछड़ा, पात्र कौन है, सुधीर भोक्ता, जो विशेष धीरजवान भगवत प्राण भक्त हैं वो पात्र बन जाएंगे, तो वेदों का सार गीता के रूप में सबका कल्याण कर देगा। अब गीता यहां प्रभुपाद लिखते हैं, बछड़ा चाहिए तो अपने आप गाय के हृदय में स्नेह का उत्पन्न होगा और दूध पैदा हो जाएगा, और एक बुद्धिमान दूध निकालने वाला हो और पात्र होना चाहिए। जैसे गाय बिना बछड़े के दूध नहीं देगी, इस प्रकार से पृथ्वी भी सबकी आवश्यकताओं को पूरी तब करेगी जब कृष्ण भावना भावित भक्त होंगे। तो भक्त हो गए बछड़े, अर्जुन बछड़ा जो हुआ, तो भक्त कोई बछड़ा बन जाए, कृष्ण भावना भावित हो, तो पृथ्वी के हृदय में स्नेह उत्पन्न हो जाएगा। गाय के रूप में पृथ्वी है, ये उनका एक धीरज को दिखाने का रूपक है, परंतु अर्थ इसका बहुत साफ है। मानव तो मानव, जैसे बछड़ा दूध निकाल लेता है गाय से, ऐसे सारे जीव, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे सांप हो, चाहे जलचर हो, उन सब की सामग्री प्राप्त हो सकती है। पूरा भूमंडल सुखी हो जाएगा और असत धी, असत व्रत जो था, अधृत अधृत व्रत जो है कहा गया है, उनको हटाना पड़ेगा। अगर मानव असत हो जाएंगे, भगवत भावनाहीन हो जाएंगे, कृष्ण भावना रहित हो जाएंगे, तो सारा दुनिया दुख भोगेगी, संसार संकट में पड़ा रहेगा। अगर मानव सदाचारी है, पशुओं को भी पूर्ण रूप से आवश्यक घास आदि मिलेगा, तो वो भी सुखी रहेंगे। इसलिए आवश्यक है, जो भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, एक चीज का अभाव है दुनिया में और कुछ नहीं, धरती के ऊपर अभाव है भगवत भावना हीन लोगों के कारण। इसका अर्थ है कृष्ण भावना भावित भक्तों का अभाव है, वो हो जाए तो संसार में किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। संसार में अभाव एक ही कमी है, एक ही चीज की त्रुटि है, एक चीज नहीं है संसार में। क्या नहीं है? भगवान के भक्त नहीं। भक्त बढ़ जाए तो संसार में सुख अपने आप हो जाए, पशु पक्षी सब सुखी हो जाए। उनको अपने दायित्व का पता नहीं है जो भगवत भावना से विहीन है, वो पशु के लिए चारा नहीं दे सकते हैं तो पशुओं को ही मार के खा जाते हैं, क्योंकि खाने के लिए अन्न नहीं मिलता है तो पशु मार के खा लेते हैं, इसलिए कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। ये आधुनिक संसार की स्थिति है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये है आधुनिक संसार की स्थिति, और सारा संसार बहुत पीड़ा में है, परेशान है। समाम चकुरो माम राजन, समाम चकुरो, अब कहती है क्या करो, मेरे को समतल करो। देव वृष्टम यथा पयः, जब आकाश से इंद्र वृष्टि करे तो पानी बह न जाए, धरती के अंदर चला जाए। अब प्रतावापि भद्रम ते, आपका कल्याण हो, बरसात चली जाए उसके बाद भी मैं हरी भरी रहूंगी। उपावर्ते तमे विभो, हे महाराज बस यह धरती को समतल कर लो और फिर आप दोहन का कार्य करो, सबका कल्याण हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्र के दो काम है, इंद्र ने एक तो पर्वतों को अपने वज्र से तोड़ दिया ताकि समतल किया, और दूसरी वर्षा करता है, तो इससे सबके लिए सुख शांति और अनाज होता है। ऐसे पृथ्वी महाराज आप एक काम करो, धरती को समतल कर लो और मेरा दोहन कर लो, तो सबके लिए सब कुछ मिल जाएगा। आप पृथ्वी महाराज ने क्या किया, आज ये प्रार्थनाएं पूरी करते हैं, आगे जो भगवान की इच्छा। श्री कृष्ण इति प्रियम हितम वाक्यम, ये हितकारी और प्रिय वचन पृथ्वी के सुने। बहुवादाय भूपतिः, बहुवादाय बड़े आदर के साथ सुने, भूव भूव पृथ्वी के वचन सुने, भूव आदाय बड़े आदर के साथ, बड़ा उनको विचार किया भूपति महाराज पृथु ने। वत्सम कृत्वा मनुम पाणवा पणाव, स्वयं भू मनु को पहला बछड़ा बना दिया मानु के लिए, और पात्र अपने दोनों हाथ ऐसे कर लिए, पणावा पाणवा पाणवा मतलब हाथ पानी, अधोत्तहा सकल औषध्य, मानव के लिए जो अन्न फल फूल सब उसका पृथ्वी से दोहन किया। तो महाराज ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर, अपने हाथों को पात्र बनाकर मानव समाज के लिए सब कुछ आवश्यक वस्तुओं का पृथ्वी से दोहन कर लिया। इसके बाद 15 श्लोकों में पृथ्वी महाराज ने जो पृथ्वी को अपने वश में कर लिया, तो फिर देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना लिया, ऋषियों ने बृहस्पति को बना लिया, फिर पूरा लिखा है कौन सा पात्र कौन सा बछड़ा और क्या उनके लिए आवश्यक चीजें, वो सबका दोहन किया। तो यहाँ पाना हमारा ये पृथ्वी की प्रार्थनाओं का प्रसंग पूरा होता है। आगे श्री कृष्ण की जैसे कृपा होगी वैसे कथा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी
प्रभु जी, मेरा आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा लगा। आपका गंगा स्नान मतलब यमुना में स्नान करना, शाही स्नान, वो आपका प्रसंग सुन के बहुत आनंद आया। प्रभु जी मेरा आज का प्रश्न यही है कि क्या अगर हम एकादशी व्रत रखते हैं और अगर कोई मेहमान आता है जो एकादशी प्रसाद नहीं खाता, मतलब उसका एकादशी का व्रत नहीं है, तो क्या हम उसको नॉर्मल खाना बना के दे सकते हैं?
अन्न खिलाने से उसको तो पाप लगेगा, लेकिन बनाने वाले को भी लगेगा। अगर उसको एक दिन के लिए कहो कि भाई आज आपको बहुत सारा पनीर का, सिर्फ पनीर जो है वो क्या कहते हैं उसको, शाही पनीर बना के दे देते हैं और कूटू की पूरी बना के दे देते हैं और जो है गाजर का हलवा बना के देते हैं, खा लो आज, इससे क्या है, माल ऐसा खिलाओ कि उसको रोटी सब्जी चावल भूल जाए। हमें याद है, हमें याद है एक बार कहीं एकादशी के दिन, एक बार हम एक शादी में गए एकादशी के दिन, भक्त के घर में शादी थी, हमको अच्छा नहीं लगा। एक बार अब तो चले गए भगवत धाम यशोमति नंदन, एक रथ यात्रा एकादशी के दिन थी, अन्न का प्रसाद किया सबके लिए, तो ऑर्गेनाइजर को कहा कि आप इतना बड़ा भगवान के नाम का कीर्तन करके और सबको अन्न का प्रसाद, पाप उनके पेट में क्यों डाल रहे हो, उनका पुण्य को पानी में क्यों डाल रहे हो, तो होना ये चाहिए कि उनके लिए कहो कि आज हमारे घर में व्रत है, आज हमारे को अन्न पकाने की मना है, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा हमने बड़े स्वादिष्ट पदार्थ बने हैं, बड़ी रबड़ी अच्छी है, इसको खा लीजिए, आप आज पा लीजिए, और पूरियाँ तो बहुत अच्छी, अब तो आज तो कोई चिंता करने की जरूरत है, डोसा भी बन जाएगा, पिज्ज़ा भी बन जाएगा, कुछ भी एकादशी का बना के खुलाओ, उसकी आदत ऐसी डालोगे एकादशी के दिन फिर आपके घर आए, एकादशी के दिन ही फिर आपके घर आए, बोले पिज्जा खिला देना, एकादशी वाला पिज्जा खाऊंगा, डोसा खाऊंगा, सब बन जाता है, कोई चिंता नहीं एकादशी। देख लीजिए, कोई बहुत मजबूरी है कोई ऐसी, वैसे तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए और एक काम करना चाहिए, वैसे क्या भगवान के लिए तो भोग बनना ही चाहिए, घर में अगर भगवान है उसके लिए तो अन्न का भोग बनता ही है, तो फिर उसको भगवान को बोलो आपका प्रसाद इसको दे रही हूँ, इसको कृपा करो अगली बार ये एकादशी रखे, तो भगवान का प्रसाद दे सकते हैं, अगर कोई और व्यवस्था नहीं हो तो भगवान का प्रसाद दे सकते हैं। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा?
प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न था कि जो इंसान अपना शरीर त्याग के जो भगवत धाम को जाते हैं, क्या वो ऊपर से सच में ही, मतलब मनुष्य को जो हम लोग नीचे रहते हैं उनको देखते हैं, अपने आशीष देते हैं, मतलब ऊपर जाने के बाद नीचे जो पृथ्वी लोग पे उनके साथ हुआ वो साथ लेके जाते हैं ऊपर, मतलब उनको मेमोरी रहती है वो सब की, उनके साथ क्या हुआ या नीचे उनके जो रिश्ते हैं वो सब याद रहते हैं, प्रभु जी ऐसा है कहीं, मतलब कहीं किसी शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन है?
जो पितृलोक में जाते हैं वो अपने पीछे जो रह जाते हैं बच्चे उनके हित के लिए सोचते हैं, पितृलोक वाले, पितृलोक में। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा प्रभु जी।
मैं, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो हरि बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
आवाज नहीं है?
अरे लगता है ये नेटवर्क इशू है, तो आपका सुन नहीं पा रहे प्रभु जी, और हम भी उनका अच्छी तरह नहीं सुन पा रहे।
हां नहीं सुन नहीं पा रहे।
नहीं आवाज, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या?
जी,
मेरा आवाज नहीं आ रहा है?